अंकित अग्रवाल की आवाज में अब सुनिए बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति शास्त्र के किताब राजनीति विज्ञान के सिद्धांत डॉक्टर पुखराज जैन की किताब से राज्य और उसके तत्व अध्याय 6 राज्य और उसके तत्व स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स। जैसा कि टीएच ग्रीन ने कहा है, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। राज्य अर्थ और परिभाषा। एक स्थान पर मैकाइवर ने लिखा है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की हैं। राज्य के संबंध में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण यह है कि राज्य के संगठन उद्देश्य और कार्यों के संबंध में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित रहे हैं। अब तक राज्य की जो प्रमुख परिभाषाएं की गई हैं, उन्हें मोटे तौर पर प्राचीन और आधुनिक इस प्रकार के दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन विचारकों के अनुसार प्राचीन विचारक राज्य के दो लक्षण मानते थे। प्रथम, राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है, और द्वितीय, राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। इसी विचारधारा के आधार पर अरस्तु और सिसरो ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसी प्रकार सिसरो के शब्दों में राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। आधुनिक युगीन परिभाषाएं। प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को व्यक्तियों का एक समुदाय कहा गया है, लेकिन आधुनिक विचारकों के अनुसार केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है। राज्य का रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र पर भली प्रकार बसे हुए होने चाहिए और इनमें शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। ब्लंचली, वुड्रो विल्सन और बर्गेस के द्वारा राज्य की परिभाषा इसी दृष्टि से की गई है। ब्लंचली के शब्दों में किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। थोड़े समय बाद यह समझा गया कि इस प्रकार के संगठन को भी उस समय तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि इस संगठन के पास संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति ना हो। इस प्रकार राज्य के आवश्यक तत्वों में संप्रभुता को सम्मिलित किया गया है, और इस बात को दृष्टि में रखते हुए लास्की ने राज्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। किंतु प्रोफेसर लास्की द्वारा की गई राज्य की इस परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि संप्रभुता के जो दो पक्ष होते हैं, अर्थात आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष, उसमें लास्की के द्वारा संप्रभुता के केवल आंतरिक पक्ष का ही विवेचन किया गया है, बाहरी पक्ष का नहीं। वस्तुतः अब तक राज्य की जो परिभाषाएं की गई हैं, उनमें फिलिमोर और गार्नर की परिभाषाएं ही सबसे अधिक मान्य हैं। ये परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फिलिमोर के शब्दों में, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। फिलिमोर की इस परिभाषा में राज्य के सभी तत्वों, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता का क्रमशः उल्लेख हो गया है। इसी प्रकार गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। गार्नर की इस परिभाषा में भी राज्य के चारों तत्वों, जनसंख्या, भूमि, शासन एवं संप्रभुता का उल्लेख है। राज्य कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, इसमें प्रथम तत्व जनसंख्या का उल्लेख है, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, इसमें भूभाग का उल्लेख हो गया है। राज्य के तीसरे तत्व शासन का संकेत जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो इस वाक्यांश में किया गया है। इसी प्रकार जिसके आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो, इन शब्दों में संप्रभुता के आंतरिक पक्ष को और जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, इन शब्दों में संप्रभुता के बाहरी पक्ष का उल्लेख हो जाता है। इसी प्रकार फिलिमोर और गार्नर द्वारा की गई राज्य की परिभाषाएं सर्वमान्य हैं। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के तत्वों के संबंध में विभिन्न विचारकों द्वारा भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। विलोबी के अनुसार राज्य के तीन आवश्यक तत्व होते हैं, सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जनसमुदाय, दूसरा सरकार या शासन के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा शासनाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले नियमों का लिखित या अलिखित संकलन अथवा संविधान, अर्थात संविधान। सिजविक ने राज्य के तीन आवश्यक तत्व जनता, भूखंड तथा सरकार बताए हैं। ब्लंशली के अनुसार भूखंड, जनता, एकता और संगठन राज्य के ये चार आवश्यक तत्व हैं। लेकिन वर्तमान समय में राज्य के संबंध में डॉक्टर गार्नर के विचार मान्य हैं। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। मनुष्यों का समुदाय पहला, दूसरा एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं, तीसरा आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, चौथा जनता की इच्छा को कार्यरूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गेटिल के द्वारा भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है, और इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। मानव के सामाजिकता के गुण के आधार पर राज्य का जन्म हुआ और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद पाए गए हैं, और अपनी कल्पना की आदर्श शासन व्यवस्था तथा राज्य की शक्ति के संबंध में अपने विचारों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो, अरस्तु, रूसो आदि विद्वान प्रत्यक्ष प्रजातंत्री शासन को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि प्रजातंत्र के इस रूप को थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है। अतः प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए कहा है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक ही होने चाहिए। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए किसी निश्चित जनसंख्या का उल्लेख करने के बजाय इस बात पर बल दिया है कि राज्य की जनसंख्या राज्य के साधनों के अनुपात में ही होनी चाहिए। अरस्तु ने आदर्श राज्य संबंधी धारणा का जो प्रतिपादन किया है, उसमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि एक श्रेष्ठ राज्य की जनसंख्या केवल कुछ हजार होनी चाहिए। दूसरी ओर हिटलर, मुसोलिनी तथा अनेक व्यक्तियों का विचार है कि राज्य एक शक्ति है, और यह शक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि इसमें अधिकतम जनसंख्या हो। वस्तुतः जनसंख्या का कम या अधिक होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसके संबंध में गवर्नर के शब्दों में कहा जा सकता है कि जनता राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा यह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखंड तथा राज्य के साधन पर्याप्त हों। व्यवहार में जहां एक ओर भारत, चीन, रूस और अमेरिका जैसे करोड़ों जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो दूसरी ओर सैन मेरिनो तथा मोनाको जैसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या केवल कुछ हजार ही है। जनसंख्या के संबंध में संख्या की अपेक्षा गुण का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या के स्वरूप पर ही राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। अतः राज्य की सुस्थिरता और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के नागरिक शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ हों। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान हो। दूसरा, निश्चित क्षेत्र या भूभाग अर्थात डेफिनेट टेरिटरी, डिग्विड और सीले आदि कुछ विद्वानों ने तो निश्चित क्षेत्र को राज्य के आवश्यक तत्वों में स्वीकार नहीं किया है, किंतु एक निश्चित क्षेत्र के अभाव में व्यक्तियों तथा व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्तमान समय में सभी विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्लंचली के शब्दों में कहा गया है कि जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश ना हो। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि का अभिप्राय केवल भू क्षेत्र से ही नहीं है, वरन इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। पहला, राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाला भूमि प्रदेश। दूसरा, भूमि प्रदेश का जल भाग जैसे झीले, नहर, नदियां आदि। तीसरा, प्रादेशिक जल क्षेत्र जैसे किसी राज्य के समुद्र तट के आसपास 3 मील या 12 मील का समुद्र। चौथा, राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाला वायुमंडल, लेकिन राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधियों, शासकों एवं सीमा के अंतर्गत अस्थायी रूप से आने वाले विदेशी जहाजों पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। राज्य की भूमि का विस्तार कितना होना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों के विचारों में मतभेद है। प्लेटो, अरस्तु, डी टॉकविल और रूसो के अनुसार राज्य का क्षेत्र कम ही होना चाहिए, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में राज्य का क्षेत्र कम होना हानिकारक समझा जाता है। आज राज्यों का विशाल आकार शक्ति का साधन बन गया है। इसके अतिरिक्त कम क्षेत्र वाले राज्य आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। संघवाद की व्यवस्था के कारण भी सामान्य बहुमत बड़े राज्यों का पक्षपाती हो गया है। वस्तुतः राज्य के क्षेत्र की सीमा के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र के बीच कोई अनुपात अवश्य ही होना चाहिए। यदि दोनों के बीच अनुपात में बहुत अधिक अंतर हुआ तो राज्य की राजनीतिक और आर्थिक अयोग्यता से पीड़ित होगा और उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य का जो भी क्षेत्र हो वह समस्त क्षेत्र परस्पर अच्छे प्रकार से संबंधित होना चाहिए और राज्य के विभिन्न टुकड़ों के बीच किसी प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं या किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से 1947 में जिस पाकिस्तान राज्य का निर्माण हुआ था उसका क्षेत्र त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उस पाकिस्तान राज्य के दो भाग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित थे। तीसरा, सरकार। यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है और प्रदेश राज्य का भौतिक तत्व, तो सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उसका एक राजनीतिक संगठन ना हो। यह राजनीतिक संगठन अथवा सरकार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्य और नीतियों को क्रियान्वित किया जा सकता है। सरकार राज्य का व्यवहारिक पक्ष है और सरकार के माध्यम से ही हम राज्य से संबंध स्थापित कर सकते या राज्य तक पहुंच सकते हैं। गार्नर ने कहा है कि सरकार राज्य का वह साधन या तंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनता असंगठित या अराजक जनसमूह के रूप में होगी जो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम होगी। अतीत में सरकार का संगठन सरल और उसके कार्य सीमित थे और सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं रही है। आज सरकार के संगठन ने जटिलता प्राप्त कर ली है और सरकार के प्रमुखतः 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके साथ ही भूतकाल में सरकार बाहरी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का ही कार्य करती थी, लेकिन आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना लिए जाने के कारण राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सरकार का कोई एक निश्चित रूप नहीं है जो सभी राज्यों को मान्य हो। वर्तमान काल में सऊदी अरब, जॉर्डन आदि में राजतंत्र, इराक, टर्की, लीबिया आदि में सैनिक शासन, रूस, चीन, पोलैंड आदि में साम्यवाद, पुर्तगाल, स्पेन आदि में अधिनायक तंत्र, भारत, ब्रिटेन, जापान आदि में संसदीय लोकतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका व अमेरिकी महाद्वीप के अन्य राज्यों में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार सरकार राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। यद्यपि प्रजातंत्रात्मक सरकार अन्य सरकारों की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ समझी जाती है। चौथा, संप्रभुता।
उपर्युक्त तीन तत्वों से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जा सकता है। गेडिल के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले तथा सरकार संपन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधिकारों में संप्रभुता ना हो। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की अपनी जनता थी, उसकी एक निश्चित भूमि और सरकार भी थी, किंतु फिर भी वह सही अर्थ में राज्य नहीं था, क्योंकि वह स्वयं संप्रभुता संपन्न न होकर ब्रिटिश नियंत्रण में ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग मात्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ संप्रभुता प्राप्त होने पर ही उसे राज्य का रूप प्राप्त हुआ। राज्य की संप्रभुता से हमारा तात्पर्य यह है कि राज्य आंतरिक रूप में उच्चतम हो, अर्थात अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करा सके तथा बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सके। किंतु यदि कोई राज्य स्वेच्छा से अपने ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार कर लेता है तो उसे उसकी स्वतंत्रता किसी भी प्रकार सीमित नहीं होती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, नियम पूर्वक स्थापित सरकार तथा और संप्रभुता होनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य नहीं कहा जा सकता। क्या संघ की इकाइयां राज्य हैं? यहां एक भ्रांति की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है जो संघ राज्यों की इकाइयों के संबंध में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कश्मीर, पश्चिमी बंगाल या भारतीय संघ की दूसरी इकाइयों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ की 50 इकाइयों के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तव में संघ की इकाइयों में राज्य का निर्माण करने वाले प्रथम तीन तत्व तो पूर्ण रूप से विद्यमान है, किंतु इनकी आंतरिक संप्रभुता सीमित होती है और बाहरी क्षेत्र में इन्हें संप्रभुता प्राप्त नहीं होती, अर्थात चौथे तत्व संप्रभुता के अभाव के कारण इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देशी रियातें जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर व हैदराबाद भी राज्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन पर परोक्ष रूप में ब्रिटिश नियंत्रण विद्यमान था और उन्हें पूर्ण अंशों में संप्रभुता प्राप्त नहीं थी। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? कभी कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? या ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अंग है और इनके पास भूमि या निश्चित क्षेत्र भी है, परंतु फिर भी यह एक राज्य नहीं है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ना तो अपनी जनसंख्या है और ना ही संप्रभुता। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं है, वह तो स्वतंत्र राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ या वॉलेंटरली यूनियन ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करना या ना करना सदस्य की इच्छा पर निर्भर है। ये सदस्य राज्य हैं, क्योंकि संप्रभुता सदस्य राज्यों के पास है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। अतः सभी दृष्टियों से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी एक राज्य नहीं है।